आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का किया भूमि पूजन और शिलान्यास। कहा, प्रदेश में खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दे रही है सरकार। डिजिटल जनगणना के पहले चरण में मुख्यमंत्री ने भी पूरी की स्वगणना की प्रक्रिया। सभी नागरिकों से जनगणना में सहभागिता दर्ज कराने का किया आह्वान। CBSE ने 1 जुलाई से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन किया अनिवार्य। 3 में से 2 भाषाएं भारतीय मूल की होंगी। और प्रदेश में 18 जून को गोरखपुर के रास्ते दस्तक देगा मानसून। सिंचाई और जल संसाधन विभाग ने सभी 18 मंडलों में 31 मई तक बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित करने का दिया निर्देश। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर में वाराणसी राजमार्ग पर स्थित ताल नदौर में करीब 393 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के बगल में 60 एकड़ भूमि पर नया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए हर गांव में खेल का मैदान बनाया जा रहा है।
हर गांव में हम खेल का मैदान बना रहे हैं, हर विकास खंड स्तर पर मिनी स्टेडियम और हर जिले में एक स्टेडियम बने, इस पर कार्य प्रारंभ हुआ है। 18 कमिश्नरी हैं, हर कमिश्नरी स्तर पर एक स्पोर्ट्स कॉलेज बने, प्रदेश में अपना एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हो, इसके लिए मेजर ध्यानचंद के नाम पे मेरठ में हम लोग स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निर्माण कर रहे हैं। इसी सत्र में हम उसका उद्घाटन भी करने जा रहे हैं। वाराणसी में BCCI की मदद से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है। और उत्तर प्रदेश सरकार और भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सहयोग से गोरखपुर में भी एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि गोरखपुर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनने से पूर्वी उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए खेलकूद गतिविधियों को आगे बढ़ाने में सहायता मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से देश में नई खेल संस्कृति आगे बढ़ी है।
प्रधानमंत्री जी ने 2014 में देशवासियों से एक बात कही थी, खेलो इंडिया खेलो के एक स्लोगन दिया था। फिर उन्होंने फिट इंडिया मूवमेंट की बात कही थी, सांसद खेल कूद प्रतियोगिता को आगे बढ़ाने की बात कही थी। देश के अंदर इनके माध्यम से एक नई खेल संस्कृति आगे बढ़ी।
श्री योगी ने कहा कि ओलंपिक, एशियाड, कॉमनवेल्थ गेम्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप तथा नेशनल चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्ति पत्र प्रदान किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम निर्माण के लिए CSR फंड से 100 करोड़ रुपए देने के लिए पेट्रोलियम मंत्री, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम के प्रति आभार व्यक्त किया। शिलान्यास कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश सुशासन, निवेश और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जाना जाता है। राज्य में कानून व्यवस्था में आए सुधार ने आम नागरिकों से लेकर उद्योग जगत तक नया विश्वास पैदा किया है। उन्होंने विश्वास जताया कि इस स्टेडियम से प्रशिक्षण लेकर ऐसे खिलाड़ी निकलेंगे जो देश का नाम दुनिया भर में रोशन करेंगे। शिलान्यास समारोह में केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान, प्रदेश के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद, खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। गोरखपुर में 46 एकड़ में बनने वाले इस स्टेडियम की दर्शक क्षमता 30,000 होगी। प्रदेश में जारी डिजिटल जनगणना के पहले चरण के अंतर्गत स्वगणना की प्रक्रिया 7 मई से जारी है। 21 मई तक चलने वाली इस प्रक्रिया में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कल गोरखपुर में स्वगणना का डिजिटल प्रपत्र भरा। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी नागरिकों से इस प्रक्रिया में सहभागिता दर्ज कराने की अपील करते हुए कहा है कि ये देश की पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना है। इसका मुख्य उद्देश्य सटीक आंकड़े जुटाकर देश के विकास और कल्याणकारी योजनाओं की रूपरेखा तैयार करना है। अंशकालिक अनुदेशकों के बढ़े हुए मानदेय वितरण को लेकर आज प्रदेश भर में उनके सम्मान में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। लखनऊ के लोकभवन में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अंशकालिक अनुदेशकों के सम्मान और बढ़े हुए मानदेय वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। सरकार द्वारा पूर्व में जारी शासनादेश के तहत अंशकालिक अनुदेशकों का मानदेय 9,000 रूपये से बढ़ाकर 17,000 रूपये प्रतिमाह करने का निर्णय लिया गया था। बढ़ा हुआ मानदेय 1 अप्रैल से प्रभावी किया गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 1 जुलाई से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य कर दिया है। बोर्ड ने एक वक्तव्य में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रम 2023 के अनुरूप इन 3 भाषाओं से कम 2 भारतीय मूल की भाषाएं होनी चाहिए। CBSE ने स्पष्ट किया है कि कक्षा 10वीं में तीसरी भाषा R3 के लिए कोई बोर्ड परीक्षा नहीं होगी और R3 के लिए सारा मूल्यांकन पूरी तरह से विद्यालय आधारित तथा आंतरिक होगा। सपा नेता और पूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खां को एक विवादित बयान के मामले में कल रामपुर की MP MLA कोर्ट ने 2 वर्ष की कैद और 20,000 रूपए जुर्माने की सजा सुनाई है। उन पर वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान थाना भोट क्षेत्र में एक सभा के दौरान तत्कालीन जिलाधिकारी के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने का आरोप था। भदोही में काशी नरेश विश्वविद्यालय की प्रथम नवनियुक्त कुलपति प्रोफेसर उमा श्रीवास्तव ने कल अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है। कार्यभार ग्रहण करने के बाद मीडिया से बातचीत में प्रोफेसर उमा श्रीवास्तव ने कहा कि विश्वविद्यालय में शोध कार्यों और गुणवत्तापूर्ण पठन पाठन सुनिश्चित करना उनकी प्राथमिकता होगी।
बहुत पुराना कॉलेज है आजादी के बाद का पहला, और अब ये यूनिवर्सिटी में तब्दील हो गया है। इसमें रिसर्च वगैरह भी अब शुरू हो जाएगी या हो रही होगी, लेकिन अब क्या है कि रिसर्च बहुत पुरजोर तरीके से की जाएगी सबके साथ, तो फिर हाई क्वालिटी रिसर्च हो, स्टूडेंट्स रिसर्च ओरिएंटेड हो, कैंपस का माहौल बहुत अच्छा हो, और इस पे मेरा प्रयास रहेगा।
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कल मिर्जापुर में ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की तरफ से तैयार किए गए विंध्य प्रसादम गिफ्ट बॉक्स का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मंत्री ने कहा कि ये पहल वोकल फॉर लोकल और महिला सशक्तिकरण का जीवंत उदाहरण है। विंध्याचल में आने वाले दर्शनार्थियों के लिए विंध्य प्रसादम में चुनरी से लेकर पूजा के सामग्री और प्रसाद उपलब्ध है। प्रदेश के नगर विकास और ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने कल वाराणसी में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को बारिश से पहले नालों की सफाई, शहर की स्वच्छता और बिजली आपूर्ति दुरुस्त करने के निर्देश दिए। बैठक में राज्य मंत्री हंसराज विश्वकर्मा भी मौजूद रहे। चित्रकूट नगर पालिका क्षेत्र में 90 करोड़ रूपये की लागत से विभिन्न विकास कार्य कराए जाएंगे। कल नगर पालिका परिषद की बैठक के बाद अध्यक्ष नरेंद्र गुप्ता ने बताया कि नगर में बुनियादी सुविधाओं का विकास करने के साथ ही इसे सुंदर बनाया जा रहा है।
उत्तर प्रदेश के फिर से मुख्यमंत्री जी के निर्देशन पर चित्रकूट के विकास के लिए चित्रकूट नगर में 90 करोड़ के आसपास का बजट प्रस्तुत किया गया है। इसमें सड़कों का निर्माण, नालियों का निर्माण और नगर के सुंदरीकरण, नगर के चमुखी विकास के लिए 26 और 27 इसका क्रियान्वयन किया जाएगा।
मथुरा सहित समूचे ब्रजमंडल में 1 माह तक चलने वाला पुरुषोत्तम मास मेला आज से शुरू हो गया है। श्रद्धालुओं की भीड़ और सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने गोवर्धन और वृंदावन समेत पूरे ब्रज क्षेत्र में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए हैं। मौसम विभाग के अनुसार मानसून 18 जून को गोरखपुर के रास्ते प्रदेश में दस्तक देगा। इस वर्ष मानसूनी सीजन में सामान्य से कम वर्षा की संभावना है। सिंचाई और जल संसाधन विभाग की ओर से प्रदेश के सभी 18 मंडलों में 31 मई तक बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित करने का निर्देश दिया गया है। बाढ़ और प्रभावित क्षेत्रों की निगरानी के लिए ये कक्ष 15 जून से 15 अक्टूबर तक 24 घंटे सक्रिय रहेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का किया भूमि पूजन और शिलान्यास। कहा, प्रदेश में खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दे रही है सरकार। डिजिटल जनगणना के पहले चरण में मुख्यमंत्री ने भी पूरी की स्वगणना की प्रक्रिया। सभी नागरिकों से जनगणना में सहभागिता दर्ज कराने का किया आह्वान। CBSE ने 1 जुलाई से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन किया अनिवार्य। 3 में से 2 भाषाएं भारतीय मूल की होंगी और प्रदेश में 18 जून को गोरखपुर के रास्ते दस्तक देगा मानसून। सिंचाई और जल संसाधन विभाग ने सभी 18 मंडलों में 31 मई तक बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित करने का दिया निर्देश। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार आपसे थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।